ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं स्वादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी वेदे रामायणश्चैव पुराण भारत तथा अद्यते अंत च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालुं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दिनतारिणे धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाशतं वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरेश्वर सद्य हृदय वृद्धे तु त्रात्रभि सुश्रुभि तत्क्षणात् निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतं पीवत भागवतं रसामलयं मुहुरः रसिक भुविवामुक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज इस इतवार को सभी भागवत कक्षा में पधारे हुए से भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज विशेष आप लोगों का छुट्टी का दिवस है। आप भारत में पहली बार योगा डे का भी पहला ही दिवस है, तो आप इन दिनों में भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, भक्ति सीखने के लिए एकत्रित होते हैं। जैसे कल हमारे गुरु महाराज भी श्रील गोपाल कृष्ण कृष्ण महाराज जी बता रहे थे, तो आज योगा डे है, तो हम लोग भी जो है दिस इज भक्ति योगा, भगवान से जुड़ने का योग जो है, हम भी यहाँ पे योग ही कर रहे हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे भागवतम के सातवें स्कंद में चौथवें अध्याय का नवा श्लोक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग हमारे साथ बोलिए। मृगा उष्ट्रा खरा मरका आँखों सरीसृप खग मक्षिका आत्मना वात पुत्र पुत्रवत् पश्यत् ते एषां अंतरं कियत। मृग अष्ट्र खरर मर्क अखु सरीसृप मक्षिक खगम आत्मना पुत्रवत पश्येत एषा मंतर कियत। धन्यवाद। थोड़ा कठिन श्लोक उच्चारण करने में हो रही है। सिद्धार्थ बोलिए। मृग हिरण उष्ट ऊंट खरा गधा मर्क बंदर आखु चूहा सरीसृप सांप खग पक्षी मक्षिका मक्खियाँ आत्मना अपने पुत्र पुत्रवत पुत्र के समान पश्यत देखें ते उन पुत्रों से एषाम उन पशुओं का अंतरम अंतर कियत कितना कम। अनुवाद बोलिए। मनुष्यों को चाहिए कि हिरण ऊंट गधा बंदर चूहा सांप पक्षी मक्खियां जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करें। इन निर्दोष पशुओं को तथा बच्चों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पशुओं तथा अपने घर के अबोध बालकों में कोई अंतर नहीं देखता। यहाँ तक कि हमारे सामान्य जीवन में भी पालतू कुत्ते या बिल्ली को बिना किसी ईर्ष्या के बच्चों की तरह माना जाता है। बच्चों की तरह बुद्धिहीन पशु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुत्र है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो बच्चों तथा बिचारे पशु में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज ने विभिन्न योनि के पशुओं को मारने के लिए अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं। उदाहरणत खेतों में ऐसे अनेक चूहे मक्खी तथा अन्य प्राणी होते जो उपज को हानि पहुंचाते हैं। अतः वे कभी कभी उन्हें कीटनाशक दवाओं के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन इस श्लोक में इस प्रकार का वध का निषेध किया गया है। प्रत्येक जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त भोजन से पोषित होना चाहिए। मानव समाज को अपने आप को ईश्वर के संपत्ति का एकमात्र भोक्ता नहीं समझ लेना चाहिए। प्रत्युत मनुष्यों को यह समझना चाहिए कि अन्य पशुओं को भी ईश्वर के संपत्ति में अधिकार है। इस श्लोक में सांप का भी उल्लेख है जिसका अर्थ यह हुआ कि गृहस्थों को सर्प से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि प्रत्येक प्राणी भगवान के उदार उपहार स्वरूप अन्न को खाकर संतुष्ट हो तो एक दूसरे जीव में परस्पर ईर्ष्या किस लिए। आधुनिक काल में लोग समाज में साम्यवादी विचार के प्रति अधिक उन्मुख रहते हैं लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि श्री भागवतम के इस श्लोक में जो कुछ बताया गया है उससे बढ़कर कोई अन्य साम्यवादी विचार हो सकता है। यहाँ तक कि साम्यवादी देश में भी बेचारे पशुओं का वध बिना विचार किए किया जाता है। यद्यपि इन पशुओं को भी जीवित रहने के लिए अपना नियत भोजन ग्रहण करने का अधिकार है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यवादिनी। तो हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ भागवतम पढ़ते हैं, जिसमें कि इस समय जो प्रसंग यहाँ पे चल रहा है युधिष्ठिर महाराज जी का नारद जी का संवाद राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल के वध के उपरांत ये जो कथा जो है उत्पन्न हुई। युधिष्ठिर इतने बड़े सभी ऋषि मुनियों के बीच में जहां पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि शिशुपाल जो है भगवान श्री कृष्ण से हिंसा करता था, और हिंसा करने पर ही भगवान के द्वारा जब वध हुआ तो बाद में उन्हीं के शरीर में जब विलीन हो गया, ऐसे आश्चर्यमय कार्यों को देखकर युधिष्ठिर महाराज ने वहां पर नारद जी से पूछा। हालांकि वहां पे बड़े से बड़े देवता लोग, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग, स्वयं साक्षात भगवान वहां उपस्थित थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है नारद मुनि से पूछते हैं। तो भगवान तो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, तो भगवान ने कि होने पता था कि आगे चल के शिशुपाल का वध होगा, फिर ऐसे प्रश्न उठेगी, फिर यहाँ पे सभा में जो भागवत सप्ताह शुरू होगा, यज्ञ में राशि यज्ञ में भागवत कथा हरिनाम संकीर्तन भी तो बहुत जरूरी है, तो वहाँ पे नारद मुनि के द्वारा भागवत कथा जो है आरंभ हुई। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, पहले ही सभी राशि यज्ञ सभी ऋषि मुनियों का पांव धोना शुरू कर दिए। और जब पांव धोना शुरू कर दिए तो छोटा सा कार्य कर रहे हैं, तो फिर जो है सभी के बीच में फिर भगवान से पूछना ठीक नहीं रहता, इसलिए फिर महाभागवत नारद मुनि जी से जो है ये प्रश्न करने लगे। तो वहां पर चर्चा हो रही है, तो जैसे आगे चल के जो शिशुपाल था वो जो जय विजय में से थे, फिर इस प्रकार जो हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद महाराज का चरित्र का गान हुआ, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल युधिष्ठिर महाराज जानना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि गृहस्थ जीवन के लिए क्या उपाय है, क्योंकि उससे पहले युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि जी सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए शिक्षाएं दे दिए, अब गृहस्थ को कोई शिक्षा नहीं मिली। अब गृहस्थ का कैसे उद्धार हो सकता है, ये जब पहले युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि गृह में भी व्यक्ति कैसे है, जो है कि उसका उद्धार का उपाय क्या है, तो भगवान जो नारद मुनि जी ने कहा कि इसके लिए उपाय जो है ये सब तरीका बता रहे हैं कि सभी कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि, भक्तों के संरक्षण में रहकर भगवान वासुदेव को सब कुछ अर्पण करें और श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन सुने, इस प्रकार जो अनेक जो है और कैसे घर में डीलिंग करना चाहिए ये सब जो है एक महाजन नारद मुनि से बता रहे। तो ये सब जो है भागवतम, जैसे हम जानते हैं कि ये जो है कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष समान कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति जाएगा तो उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो उसी प्रकार से भागवतम में जो है सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। एक आदर्श गृहस्थ, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, एक बच्चे का क्या कर्तव्य होता है, संतान का क्या कर्तव्य होता है, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, एक पति का क्या कर्तव्य होता है, एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है, एक मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, ये जैसे भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है हम सबको दे रहे हैं। जय श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्रील प्रभुपाद की। तो हमें भागवतम के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो इस प्रसंग में हम सुन रहे हैं कि एक आदर्श परिवार नट गृह में थी, गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति को किस तरह से उसका जीवन यापन करना चाहिए, ये भक्तों के लिए जो है जो शिक्षाप्रद है। तो युधिष्ठिर नारद मुनि बता रहे कि यावत ब्रियते जठर तावत सत्व ही देही नाम अधिको अभिमन्यते से स्थेनम दंडमर्हति। तो गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि हम सबको चाहिए, मनुष्यों को चाहिए कि जितना हमारे उदर का भरण पोषण के लिए चाहिए आवश्यकता है उतना ही व्यक्ति को जो देही है प्राणी को उतना ही अर्जित करना चाहिए। आज समाज में हम देखते हैं कि लोग जो है इतने परेशान क्यों हैं और लोग क्यों कहते हैं कि हमारे पास भक्ति करने के लिए समय नहीं होता, सब कुछ चरित्रहीन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आवश्यकता जो है बढ़ चुकी है, हमारी आवश्यकता सब कुछ बढ़ चुकी है। लेकिन देखिए एक आदर्श, एक अगर हमारे लिए मनुष्यों के लिए इंस्ट्रक्शन है तो ये है कि यावत भ्रियते जठरे तावत सत्व ही देही नाम। अगर हम सब लोग को सिर्फ उतना ही हम लोग ग्रहण करें जितनी आवश्यकता है तो समाज कितना सुंदर बन जाएगा। आज के समय तो ये स्थिति नहीं है और हर कोई जो है अपना अपना जितना ज्यादा से ज्यादा संग्रह हो सकता है वो संग्रह करने में लगा हुआ है। प्रभुपाद भी अपने प्रवचन में बताते कि भगवान ने सृष्टि बनाया और भगवान पूर्ण मदह पूर्णमिदम है, भगवान पूर्ण है। भगवान में अगर भगवान ने सृष्टि बनाया तो सृष्टि भी जो है पूर्ण है, इसमें किस चीज का अभाव नहीं है। आजकल हम कहते हैं कि जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है, प्रभुपाद जी के शब्दों में जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो भगवान जो है ज्यादा दे देंगे, ज्यादा जो है और भी दे देंगे, इसमें जो है किसी की कमी नहीं है। कमी है कि हम लोग यज्ञ नहीं करते, यज्ञ हम लोग नहीं करते, इस कारण से हमें कमी महसूस होती है। तो अगर समझ लीजिए इस बात को लेकर हमें ये करें कि जितनी ही आवश्यकता है उतना ही हम लोग संग्रह करें। हम लोग भक्ति करने के लिए हमें जो है एक जीवन को सिंपल रखना पड़ेगा। अधिक हम लोग दूसरे चीजों का अगर हम अपने जीवन में उपाधियों को हम ले लेंगे, जैसे कि मुझे मेरा टारगेट है धन भी कमाना, ये भी करना, वो भी करना, दुनिया के सब चीजें करेंगे तो अच्छी भक्ति हो नहीं पाएगी। भक्ति करने के लिए भी आपको उतना ही प्रायोरिटी देना पड़ेगा जितना आप जो एक लोभी व्यक्ति जो धन संग्रह के लिए जैसे वो सदैव रहता है, जैसे एक जो एक युवा है युवती के प्रति जैसे आकर्षित रहता है, उसी प्रकार भक्ति करने के लिए भी अगर आकर्षित रहेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे, तभी जो है भक्ति हो पाएगी। इसीलिए धन कमाना पाप नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक जितनी आवश्यकता है, चलो ये कर लो, आजकल समाज में तो स्थिति हो चुकी है एक पीढ़ी के लिए कर लो ठीक है, लेकिन आने वाले कई पीढ़ियों के लिए भी धन संग्रह कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जो है उनके जो आगे जो उनके पीढ़ियां आएगी वो सब जो है अपंग होंगे, कुछ धन कमा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, उसके लिए भी जो है जुटाने में लगा हुआ है। बेटा तेरा जुटा दो जुटाते तेरा तो गया काम। तो इसीलिए मनुष्यों के लिए ये भागवतम का भागवतम आदेश करता है, जितनी अपना भरण पोषण के लिए आवश्यकता है उतना संग्रह करें, वो उतना जो है प्राप्त करें, इसमें कोई जो है असुविधा नहीं है। हम जानते देश में बड़े बड़े नेताओं ने जो है ये धन को जब रख जब जो बाहर अपने पास छुपा के रखे हुए, वो तो खा नहीं पाए, वो तो यूज नहीं कर पाएगा, वो मर भी जाएगा, लेकिन इतना पैसा कभी खा नहीं पाए। लेकिन जो है ये जो है जो बदमाशी है कि संग्रह अधिक करते। तो इस जगत में प्रभुपाद के शब्दों में इस जगत में अभाव किस लिए है, क्योंकि लोग अधिक संग्रह करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जो समाज में अभाव हो रहा अभाव होती है। लेकिन भगवान की सृष्टि में किसी भी चीज का कमी नहीं है। अगर ऐसे करने वाले को प्रति जो बता रहे कि वो व्यक्ति जो है दंड का अधिकारी है, वो निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। इसके विषय में जो खूब हमने सुना, कल भी रुक्मिणी कृष्ण जी बता रहे थे, तो आज के श्लोक में भी नारद मुनि बता रहे हैं कि हमें एक गृहस्थ व्यक्ति को अपना जो आवश्यकता भर कैसे कैसे उसका चरित्र जो डेवलप होना चाहिए। तो आज क्या बता रहे कि मृग हिरन और ऊंट और गधा और बंदर चूहा सांप मक्खियों के प्रति, और दूसरे शब्दों में आप और भी जो पशुओं के प्रति सभी के प्रति जो है अपने पुत्र के समान ही भाव रखना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे कि जैसे एक पुत्र जो है नादान होता है, उसको ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अन्य पशुओं जो हमें कष्ट देते हैं बेचारे, उनको भी ज्ञान नहीं होता कि मैं उसको जैसे मच्छर काटता है तो उसको ज्ञान नहीं है कि मच्छर जो है उसको कष्ट दे रहा है। मच्छर काटने से जो कष्ट होती है उसको ज्ञान नहीं है, वो तो सोच रहा है कि मेरा भोजन प्राप्त हो गया, लेकिन हम लोग उसको जो मारते हैं। तो हमें सीखने की आवश्यकता है कि मनुष्य को बेफजूल में पशु हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। यहाँ तो कहा गया है इतने सारे पशुओं के साथ जो है हम एक अच्छा व्यवहार रखें, अपना ही पुत्र के समान, अर्थात अगर कोई पशु कष्ट में है, जैसे जो है अभी बारिश हो रहा, उसमें बाहर जो कुत्ता जो है वो भीग रहा होगा, पेड़ में पक्षियां होती वो भीग रहे होंगे, तो उनको भी तो कष्ट होता है। लेकिन जो अगर निर्दयी व्यक्ति उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सब अब पूरी संपूर्ण जगत को ही अपने भोग के लिए सोचता, सब कुछ मेरे भोग के लिए है, इसलिए लोग मांसाहार करते हैं कि जितने भी संसार में पशु पक्षियां हैं, पता नहीं और भी क्या क्या है, बहुत कुछ लोग खा जाते हैं, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है मेरे लिए है। लेकिन एक आदर्श गृहस्थ व्यक्ति को जो आदर्श गृहस्थ जीवन बिताना चाहता है, उसके लिए ये है कि सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखे, सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखे। और जैसे अगर मुझे कष्ट होता है, अगर मुझे मेरा भी कभी उंगली कट जाता तो मुझे कष्ट होता है, बेचारा उन पशुओं के प्रति पशु जो है, पशुओं कैसे कष्ट नहीं होता होगा, उनका जो है इतनी हत्या होती है। तो इस प्रकार जो है एक उन्नत चेतना को, एक उन्नत चेतना को जो है एक उन्नत चेतना को डेवलप करने के लिए ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है कि उन्नत चेतना को डेवलप करने के लिए। और विशेष करके जब जब भक्त समुदाय होते हैं और हम लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें तो विशेष करके चाहिए। भक्ति जीवन में जब तक व्यक्ति एक संभाव के स्तर पर नहीं आएगा, एक दूसरे को दुख से खुद जो है दुखी नहीं होगा, तो इस प्रकार जो अगर सभी प्राणी के प्रति संभाव नहीं रखना, जैसे सभी के प्रति आदर भाव ना रखें, संभाव ना रखें, अगर मुझे भी कष्ट होता है तो दूसरों को भी कष्ट हो सकता है, ये सब जब अगर व्यक्ति नहीं रखे, उसके अंदर ये निर्दयता, ये दया भाव है, अगर व्यक्ति के अंदर निर्दयता आ जाता है तो फिर उसके अंदर वो भक्ति का स्वाद, वो भक्ति का आनंद उसे प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भागवतम में हमें इतने हजारों हजारों जो ऐसे कथा मिलती है जिसके द्वारा कि हम लोग एक अच्छी चेतना में रहकर भक्ति हम कर सकें। इसको कहा जाता है आइडियल भक्त। भगवान ने सभी को जन्म दिया है, सभी को जन्म भी दिया है और सभी को जन्म भी दिया और सभी को जो है जन्म मृत्यु, सभी का मृत्यु का भी निश्चित है। मनुष्य समाज इस प्रकार भी कहता है कि अगर पशुओं को ना खाया जाए, ऐसे बता रहे थे, ये मछलियां जो है अगर तालाब में भरी रहती है, अगर ना खाया जाए तो सब तो मछलियां भर जाएगी। ये जो है इसकी जो जिम्मेदारी भगवान लिया हुआ है, इसका जिम्मेदारी हम तो ना लिए, इसका जिम्मेदारी हम नहीं लिए। अगर कोई किसी मनुष्य को हत्या कर देते तो हमारे पर सरकार के द्वारा दंड प्राप्त होता है। तो ये सारे जितने जीव है ये सब भगवान के संतान है, एक उन्नत चेतना वाले व्यक्ति का लक्षण है कि भगवान के नियमों को पालन करे, सभी जीवों को भगवान के संतान के समान समझे, किसी को भी कष्ट ना दे। एक पशु समाज के प्रति छोड़िए, अभी आज के समय तो हम जो है एक दूसरे के प्रति भी संभाव नहीं है, मनुष्य समाज को ही जो है, मनुष्य समाज में भी और किसी व्यक्ति को कष्ट होता है, किसी व्यक्ति कष्ट में पड़ा हुआ है तो हम जो उससे कुछ हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझ लीजिए, जैसे अभी जो है वहां पर ये नेपाल में भूकंप आया है, इतने हजारों हजारों लोग जो है वहां जो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ये जो भगवान जानते हैं कभी किसी को क्या उनका भरण पोषण करना, भगवान ने जन्म भी दिया है उसका भरण पोषण का भी भगवान ने व्यवस्था किया हुआ है, उसका मृत्यु का भी व्यवस्था किया हुआ है। जो सभी पशु पक्षी है वे लोग जन्म हुए हैं तो उनका भरण पोषण का भगवान ने व्यवस्था किया हुआ। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे, अगर पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पत्ति होगी सभी जीव खाएंगे, हम भी खाएंगे, पशुओं भी खाएंगे, पशु भी अधिकतर तो शाकाहारी है वो भी खाएंगे, तो सभी कोई जीवित रह सकता है, सभी कोई जो है जीवित रह सकता है। इसमें जो है तो ये है उन्नत चेतना हमें प्राप्त करना। और किसी भी व्यक्ति के प्रति जो है भेदभाव नहीं रखना और निर्दयता भक्तों के अंदर होना नहीं चाहिए। तो एक इसी प्रकार जो है पहले के समय भी सभी ऋषि मुनि लोग इसी प्रकार का ही कामना करते थे, सभी के मन में भावना थी। आज हमारे अंदर भावना नहीं है, अभी जो है अभी हमारा मन, इंद्रियां, सब दूषित हो चुकी है। हम इन इन जो है भागवतम की आदेश का पालन हम अभी कर नहीं पाते। जितनी आवश्यकता है उतना ही हम लोग जो है उतना ही हम लोग संग्रह करें। तो पहले के समय लोगों में, साधारण लोगों में इस प्रकार जो चेतना थी, तो सभी लोग देखते थे कि मेरे द्वारा कोई अन्य प्राणी को किसी प्रकार कष्ट तो नहीं हो रहा, पहले ये देखते थे। आजकल क्या हम क्या देखते हैं, उससे बिल्कुल जो भी नहीं। इस प्रकार जो है जो ऋषि थे अगस्त ऋषि, हाँ अगस्त जी, तो अगस्त ऋषि भी जब उनकी उन्होंने जो है एक कन्या से विवाह किया, लोप मुद्रा नामक जो है लोप मुद्रा से विवाह किया, तो उस पर जो है उसके बाद पत्नी को लेकर थी राजकुमारी, पत्नी को लेकर हरिद्वार चले गए। हरिद्वार तो वहाँ जाकर उन्होंने खूब तपस्या में लीन हुए और उनकी पत्नी जो उनकी सेवा में लगी रहती थी। तो कुछ समय बाद जो है अगस्त जी को संतान उत्पन्न करना था, उसी के लिए उन्होंने विवाह किया था। जब संतान उत्पन्न करने के लिए गए तो उनके पत्नी ने कहा, देखो मैं राजकुमारी हूँ और इस प्रकार जो है एक साधु वेश में फटा हुआ वस्त्र में समागम करना ठीक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा आदर्श चरित्र का, तो आप मेरे लिए अच्छे जो है एक घर का निर्माण कीजिए, धन संपत्ति का जो है निर्माण कीजिए। तो अगस्त जी ने कहा, अगर मैं ये सब निर्माण करूं तो मेरी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाकर आप किससे मांग कर, तो अगस्त जी ने स्वतः ही कहा ठीक है मैं जाकर किससे मांग कर लेके आता हूँ। तो वो गए कई राजाओं के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा कि हमें जो है मुझे कुछ धन दीजिए। तो राजाओं ने क्या किया, उनके पास सारा लिस्ट जो है पकड़ा दिए। देखिए, एक तो अगस्त ऋषि को श्राप भी, मना भी नहीं कर सकते कि बड़े तेजस्वी ऋषि थे, तो लिस्ट पकड़ा दिए। देखिए, हमारा जो राज्य में इतनी आमदनी होती है और इतनी जो है उपयोग होती है। तो अगस्त जी ने कहा था मुझे वो धन दीजिए जिसके द्वारा अन्य प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो अगस्त ने सारा पेपर चेक किए तो देखा, अगर मैं इसमें से धन लूंगा तो अन्य प्राणियों को कष्ट होगा, उनकी आवश्यकता नहीं मिलेगी, कष्ट होगा। तो उन्होंने धन को लेना जो है मना कर दिया। बाद में किसी एक असुर राज ने उनको जो है ये सब जो है धन की आवश्यकताएं दी। तो पूर्व काल में भी ऋषि मुनियों के जीवन में, एक परिवार के जीवन में ये भावनाएं थी कि किस प्रकार हमारा साथ जो है किसी अन्य जीवों का कष्ट ना हो। अपने पुत्र के समान ही एक गृहस्थ व्यक्ति सभी को अपने पुत्र के समान ही मानते हैं। तो एक राजा भी सभी को अपने पुत्र के समान, सभी को अपने पुत्र के समान, प्रजाओं को अपने पुत्र वत पालन करते थे। उसी प्रकार जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भी अपने अपने दिनचर्या में, अपने गृह कार्य में ये जो है उनको भी एक आदर्श स्थापित करने के लिए सभी के प्रति संभाव रखना चाहिए, मांसाहार से दूर रहना चाहिए। सभी प्राणी को जीने के लिए समान अधिकार है, सभी प्राणियों को जीने के लिए समान अधिकार होता है। ये उन्नत चेतना वाले व्यक्ति का लक्षण होते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी जब राज्य करते थे, उनके राज्य में भी सभी जो जितने प्रजा थे सभी को ध्यान रखते थे, सभी को किसी की भी जो है कुछ भी कमी ना हो। जैसे हम जानते कि भगवान रामचंद्र भी जो है एक कुत्ते के साथ भी जो है हिसाब किताब जो है उन्होंने किया, उसको किसी प्रकार से उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। तो इसी प्रकार जब तो ये होती है भगवान के भक्ति करने से, जो एक भगवत भक्ति, भगवत भक्त व्यक्ति के अंदर ही ये चेतना आ सकती है, भगवत भक्त व्यक्ति के अंदर ही चेतना आ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि सुनवत भागवतम ईशम, प्रतिदिन गृहस्थ को चाहिए ये भागवतम का श्रवण करें। पहले ही नारद मुनि ने कहा भागवतम प्रतिदिन सुनेगा, सुनने में तब उसके अंदर धीरे धीरे करके ये चेतनाएं जागृत, ये चेतना जो है जागृत होगी, ये चेतना जागृत होगी कि सभी प्राणियों को अपने पुत्र के समान, पुत्र के समान दृष्टि से देखें। हालांकि ये बात तो है कि अपने पुत्र जैसे व्यवहार तो नहीं कर सकते, नहीं तो कर तो नहीं पाओगे। किसी पशु को लाकर अपने घर में रख के उसको भी गर्म कपड़ा पहनाओ, थाली में भोजन परोसो, ये सब तो नहीं। लेकिन एक दयाभूति होनी चाहिए, सभी को दयाभूति होनी चाहिए। दूसरे प्राणी को कष्ट देकर खुद को कष्ट होना चाहिए। ऐसे कष्ट जो है कई जो है हमें भी कष्ट ऐसे प्राप्त हो सकता है। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में कई बार जो है जैसे भक्त चर्चा कर रहे थे कि जैसे हम तो ऐसे प्रवचन सुन लेते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, सभी कष्ट भोग रहे हैं, तो इस समय जो है पक्षी जो पेड़ बैठा है वो बारिश से भीग रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, यानी वो खुशी है, वो कष्ट भोग रहा है। तो अगर हम लोग भी अगर हम अच्छा भक्ति नहीं करेंगे तो हमें भी ऐसे कष्ट मिलेगा। अब जो है हम भी तो वो जो है एक प्राणियों को देखकर, दूसरे प्राणियों को देखकर हम सीखें कि हमारा जीवन में भी किस प्रकार जो है हमारा जीवन में ऐसे कष्ट आ सकता है। तो उस प्रकार जो ये सब ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो इसी के लिए नारद मुनि जो है ये सब चीज जो है यहाँ पर जो है ये सब चीज इसी के लिए नारद मुनि ये सब शिक्षाएं जो है हमें यहाँ पर दे रहे हैं। अगर इस भागवतम की शिक्षा के अनुसार हम उचित रीति से अगर हम लोग धर्मों का पालन करेंगे तो समाज में किसी प्रकार का कमी नहीं होगी, तो जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न से प्रजा जीवित रहते हैं, प्रजा सुखी होते हैं। मेन कार्य है कि इस समय जो समाज में अभाव है, हम सबके लिए जो हमारा दैनिक जीवन में भी जो अभाव है, इसका यह है कि यज्ञ नहीं होती, यज्ञ नहीं होने कारण अन्नात् भवति भूतानि पर्जनात् अन्न संभव यज्ञात् भवत पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ करने से मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी भी जो है ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ अन्न का अभाव है इसलिए लोग मांस भक्षण कर रहे हैं। अन्न तो अभी भी है, हो सकता है आगे चल के अन्न का अभाव हो जाए जब यज्ञ बंद हो जाएगा, तो तब जाके हो सकता है। लेकिन धर्म का पालन करने से भगवान हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज भी राज्य करते थे उस समय भी जो है वर्षा जो है उचित समय पर होती थी, उचित समय पर जो है हालांकि अभी दिल्ली लोगों के लिए वर्षा की आवश्यकता है, बहुत गर्मी से लोग परेशान है इसलिए वर्षा आ गया। लेकिन जो पहले के समय ऐसे होता था कि वर्षा होती थी वो उचित ऋतु के समय, हर ऋतु अपना कार्यों को बड़े ही अच्छे ढंग से करते थे, बड़े ही सुखमय, प्रजाओं को सुख मिले इस प्रकार जो इसी प्रकार ऋतु है एकदम राजा के अनुकूल रहती थी, अनुकूल रहती थी। क्योंकि राजा क्या है, ये समदर्शी होते हैं, संभाव रखते हैं, सभी प्राणियों के पास संभावना रखते हैं। तो उचित समय पर वर्षा होना, उचित समय पर जो है जो सब कुछ होता था, ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और पहले के समय यह होता, युधिष्ठिर महाराज के समय ऐसे होता था, गर्मी भी ऐसी पड़ती थी कि प्रजा उसमें परेशान नहीं होते थे, वो भी सुखी से रहते थे, क्यों वो भी सुखी से रहते थे। और गर्मी भी पड़ती थी और गर्मी के द्वारा जो है जो सूरज की किरण के द्वारा अग्नि में शक्ति आती थी। तो इस प्रकार जो धर्म का जब पालन किया जा रहा था तो प्रजा सदैव संतुष्ट, सदैव जो है संतुष्ट रहते थे। तो उचित समय पर वर्षा होना, उचित जो पृथ्वी हमें हर आवश्यकताओं का पूर्ति करना, हर आवश्यकता जो है पृथ्वी हमें देती है, जैसे अन्न, मुख्यतः अन्न उसका उपजाऊ है। इसके लिए बहुत सारे अन्न, औषधि, वनस्पतियां, फल फूल, अगर ये सब पृथ्वी अगर ना दे तो मनुष्य क्या खाएगा। तो ये सब जो पृथ्वी पृथ्वी देते थे। और नदियां भी स्वच्छ जल भरी रहती थी, नदियां स्वतः ही देती थी, ये दैवी योग से ऐसा व्यवस्था थी। और पर्वत हमें जो है खनिज देते थे, जैसे अभी भी जो है सारे चीजें जो हीरा सोना ये सब जो पता जो मिलती है, कितना एक खनिज का कितना महत्व है, ये सब जो है जो प्राप्त होती थी। औषधियाँ, लता और औषधियाँ, औषधि जो है औषधि में शक्ति होती, शक्ति होता, प्राणी खाता है तो वो रोग निवृत्त रहता है। और ऋतुएं जो है वो अनुकूल समय देता था। और सारे जीव तीनों तापों से मुक्त रहते थे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। ये युधिष्ठिर महाराज के राज्य काल में होता था, क्योंकि वो सब राजा लोग जो है सब धार्मिक थे। तो राजाओं में भी ये भावना होना चाहिए कि सभी के प्रति संभाव रखे, पशुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति, सबके प्रति। ये नहीं कि पशुओं को काटने के लिए वो अनुमति दिया जाए, वो जो है एक धार्मिक राजा नहीं है। तो उसी प्रकार हम चाहते राजा भी धार्मिक बने, सभी प्रजा सुखी रहे। तो जो गृहस्थ व्यक्ति है, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए आदेश है, गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जब पारिवारिक जीवन में है तो उसके लिए भी एक कर्तव्य बन जाता है, वो भी संभाव रहे, सबके प्रति संभावना रखे, संभावना रखेगा तो सभी सुखी रहेंगे, जो पशु भी सुखी रहेगा और मनुष्य भी सुखी रहेंगे, दूसरे प्राणी भी सुखी रहेंगे। दूसरे प्राणी में देखिए केवल या पशुओं की ही बात नहीं की गई है, पशुओं के साथ साथ दूसरे प्राणी भी मनुष्यों के प्रति संभाव रखें। तो ये जो है उन्नत चेतनाशील व्यक्ति है। तो हम ये सीख सकते हैं कि इस श्लोक से कि इसके द्वारा हमें क्या सीख मिलती है कि व्यक्ति को बेफजूल मांसाहार नहीं करना चाहिए, और दूसरे दुखों को दूसरे व्यक्ति का दुख को देखकर उसके अंदर भी दया आनी चाहिए। और उस दया से वो भगवान के प्रति भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान उसकी जो है दुख कैसे दूर हो सकता है, और उसको जो है सभी जीवों का दुख दूर हो सकता है भगवान की भक्ति करने से। तो ये कामना करें कि सभी प्राणी कैसे भगवान की भक्ति में भगवान की भक्ति में लगेंगे तभी जो तीनों तापों से वो मुक्त होंगे। इसी प्रकार उन्नत चेतना को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आज हमें यहाँ पर नारद मुनि का हमें आदेश प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग इसका यही हमें इसे जो है सीख मिल रही थी और हमें जिस प्रकार यहाँ पर कहा गया है तो उन्हीं के प्रति हम जो है सीखें और जानें, उसी को जो हम इसमें आप यहाँ पे प्रयास कर रहे थे। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी बताइए।
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने खूबसूरत लेक्चर के लिए। प्रभु जी जैसे भी आपने कहा कि पशु पक्षियों के साथ भी हमें थोड़ा संभाव रखना चाहिए थोड़ा, तो पशु पक्षी कई लोग पालते हैं तो क्या ये सही है?
हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि लोग अपने घर में पशु पक्षियाँ पालते हैं और जो वो भी सही है कि ये नहीं कि हमें, देखिए यहाँ पर ये है कि उन्नत चेतना प्राप्त करने के लिए उन्नत चेतना प्राप्त करने के लिए हालांकि ऐसे भक्तों के घर में तो कुत्ता बिल्ली तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्नत चेतना प्राप्त करने के लिए कि फिर कुत्ता बिल्ली पालते हैं, बहुत सारे कुत्ते बिल्ली है, सबके प्रति एक भाव रखना चाहिए, सबके प्रति एक दया भाव रखना चाहिए। दूसरे प्राणी अगर किसी कष्ट में, दूसरे जीव देखते कितने सारे पशु इतना कष्ट में जब पड़े हुए होते हैं तो उनके देख के भी दुख होना चाहिए, बेचारा ये पशु कितना कष्ट भोग रहा है। केवल अपने ही जो घर के पशु पक्षी अटैचमेंट ना रखें। देखिए भगवान सबका पालन पोषण करेंगे, तो यहाँ भगवान सबका पालन पोषण करेंगे। अगर पशु को उसका जन्म दिया है तो उसका भी खाने पीने का, पक्षी भी जन्म दिया है उसका खाने पीने का भगवान ने सबका व्यवस्था किया हुआ है। लेकिन अभी जो मनुष्य संभाव इसमें रखें, इसमें कहा गया है कि अच्छी बर्ताव करें पशुओं के साथ, जो अच्छी बर्ताव किया जाए, तो इस प्रकार जो है अनेक पशु पक्षियों के प्रति अगर आदर भाव रखें तो ठीक है। ऐसे पक्षियों को तो पिंजरे में रखना उचित नहीं है, कि स्वतः ही भगवान ने उसको जो उसका नेचर दिया है उससे हम वंचित करके रख रहे हैं। अगर कोई कुत्ता को भी घर में रखकर उसको अच्छा भोजन दे दे, उसको हीटर रूम दे दें, देसी घी से पका हुआ भोजन दे दें, उससे सब कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना, उसका कुछ कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी। कुत्तों को दे सकते हो, प्रसाद दे सकते हो, बहुत सारे लोग घूमते भी हैं, ये जो भक्त लोग भी है जो उसको प्रसाद देते, इस प्रकार से देके दूसरे पशुओं को जो है सेवा करना चाहिए। दूसरे पशु जैसे आदर्श गृहस्थ के लिए भी हम जो सुनते हैं कि आसपास घर में कोई पशु जो भूखा नहीं रहना चाहिए, तो उनका भी भोजन दे, पाले ना लेकिन आसपास में है तो उनको भी देखें, गायों की सेवा करें, इस प्रकार जो है करें और तो हम अपनी उन्नत चेतना को विकसित करें। तो यही है कि अजनबी पशु जो है वो अज्ञानी होते हैं, और बच्चा भी अज्ञानी होता है, तो अज्ञानी तो पशु को भी, अज्ञानी को कैसे व्यक्ति उसका जो हिंसा कर सकता है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य ये बता रहे कि हिंसा आचरण से बचें पशुओं, ये गृहस्थ के लिए विशेषकर भक्तों के लिए जो है ये कर।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
और कोई? जगन्नाथ प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण,
धन्यवाद।
ठीक है
धन्यवाद प्रभु जी। अभी आपने बताया कि जैसे सांप भी है उसको भी अपने पुत्र की तरह ही, बच्चे की तरह ही पालना चाहिए।
हाँ
प्रभु जी, सांप की प्रकृति तो अपनी प्रकृति के हिसाब से उसने तो डसना ही है। आप उसको चाहे जितनी बार दूध पिलाएंगे तो वो तो डसेगा ही डसेगा आपको, क्योंकि उसकी तो प्रकृति है, भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया है। इस तरह से अगर वो अपने घर में आ जाएगा तो जो उसके घर में भाई बहन रहते होंगे उनको भी डेंजर हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, उनकी भी मृत्यु हो सकती है।
जी जी।
तो प्रभु जी सांप को कहाँ तक रहेगा कि उसको भी अपने बच्चे की तरह ही पालना चाहिए।
ठीक,
धन्यवाद प्रभु जी।
हाँ। तो देखिए ये जो सर्प होते ईर्ष्यालु जीव होते तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे नहीं किसी व्यक्ति को घूम फिर कर वो सांपों को मारते रहे, और सांप को ऐसे व्यवहारिक रूप में देखा भी गया है, व्यवहारिक रूप में देखा गया है। अगर कोई सांप दिखता है तो असलियत में प्रैक्टिकल चीजें देखा गया सांप को, तो आप सांप देख लिया घर के अंदर घुस गया तो उसको निकालने का भी उपाय होता है, कई उपाय है उसको घर से निकाल दो। या ऐसे गांव में देखा, गांव में जाकर पकड़ के बाहर फेंक देते हैं, हो जाती है। अभी हम लोगों कभी सांप का सामना नहीं किए, सिर्फ देखते ही हम लोग जो कांपने लग जाते हैं, ऐसे पकड़ के जो है वो बाहर फेंक देते हैं। और उसके बाद जो है अगर कहीं सांप दिखाई देता है, ऐसे सांप देखना बड़ा अच्छा होता है। अगर सांप का भी दर्शन हुआ उसको प्रणाम कीजिए, आपका दिन जो है शुभ निकलेगा ज्योतिष के अनुसार। और जो सांप होती है, कई बार ऐसे अगर आप उसको परेशान नहीं करो वो भी आपको कभी परेशान नहीं करेगा। सांप तभी डसता है जब उसको लगता है कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, तभी जो है वो हिंसा करने का भावना रखता है, नहीं तो वो अपने रास्ते में जो है निकल जाता है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो गाँव में देखते हैं इस प्रकार जो है, कोई व्यक्ति सांप को देखता है तो एकदम से उसको हाथ जोड़ता है। इस प्रकार से अभी हम जगन्नाथपुरी में ट्रैवलिंग कर रहे थे भगवान जगन्नाथ जी का नवकलेवर देखने के लिए, तो इसमें गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी के नीचे सांप आ गए, तो उस ड्राइवर को इतना फील हुआ कि मैंने जो है सांप को मार दिया। उसने बड़ा पश्चाताप किया और उसने विशेष करके वो शिव जी के मंदिर में गया, भगवान का शिव को जल चढ़ाया, उनका पूजा किया और जो है वो क्षमा याचना किया। तो गांव में ऐसे लोग ऐसी जो है भावनाएं होती, चिंतन होती थी। तो अगर हम लोग तो इस प्रकार जो है सांप के साथ भी वर्ताव रखे, कोई नुकसान नहीं है। सांप ये तो नहीं कि वो हमें कोई जबरदस्ती करेगा, हाँ कमरे के अंदर घुस गया है कुछ नुकसान करने वाला, तब तो उसको मारना कोई अपराध नहीं है, जब आपका प्राण संकट में पड़ी है। अन्यथा बेफजूल उसको जाकर हत्या करना, ये जो है जो दंड के इससे जो है मनुष्य को दंड मिलेगा। ठीक है जगन्नाथपुरी प्रभु, इन प्रभु जी को
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपके बड़ा अच्छा आपने समझा दिया हमें,
प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकल मैंने बता दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।